मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं धार्मिक स्वतंत्रता पर आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले एक दो जो दूसरी बातें हैं वे करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि इस बीच में मुझे कुछ मेल मिले हैं और उस मेल में आप में से कुछ प्रिय श्रोताओं ने इस बात की ओर हम लोगों का ध्यान दिलाया है कि कुछ अखबारों के जो आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या जो आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें कभी आपको तथ्यों की त्रुटियां देखने में मिलती हैं तो कभी आपको बकायदे प्रूफ रीडिंग की भी गलतियां मिल जाती हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप हम लोगों को तो खैर सूचित करते ही हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उस अखबार के एडिटर को भी लिखें, क्योंकि जब आप अखबार के एडिटर को लिखेंगे तो सुधारना तो देखिए उन्हें ही है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा यही हो सकता है कि हम वे आर्टिकल्स या एडिटोरियल कमेंट्स आपको प्रोवाइड ही न करें, और मुझे लगता है कि वो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक्स हैं तो उसको आप ठीक ही कर लेंगे। तथ्यों की गलतियों को आप तभी पकड़ पाएंगे जब सही तथ्य आपको मालूम हो, तो बाकी चीजें तो उसके काम की होती हैं, इसलिए हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप एडिटर को लिखेंगे तो डेफिनेटली एडिटर उस पर ध्यान देगा और आगे इस तरह की गलतियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि वो सबसे सटीक और सही मंच होगा जहां आपको अपनी बात रखनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू जो काफी समय तक चलेंगे। 22 सितंबर यानी कि 1 महीने 20 दिन का वक्त इसमें लगेगा। मैंने पहले भी इस पर बातें की थी, हर साल बात करता हूं, आज भी कर रहा हूं, और बात मैं ये कह रहा हूं कि आप सबको चाहिए कि कभी न कभी कम से कम एक दिन के लिए समय निकालकर आप यूपीएससी जाएं, धौलपुर हाउस जाएं। बहुत खूबसूरत वहां का वातावरण है, सड़कें बिल्कुल बड़े बड़े वृक्षों से ढकी हुई हैं, आपको वैसे भी अच्छा लगेगा। मौसम तो वैसे देख ही रहे कि काफी कुछ खूबसूरत हो चुका है, सुहावना हो चुका है, और वहां जो स्टूडेंट इंटरव्यू देकर निकलते हैं उनसे आप मिलें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको कितना फायदा होगा। आप उनसे मिलेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हमारे जैसे ही हैं, या मैं भी तो इन्हीं के जैसा हूं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ, ये जरूर है कि मैं इनसे पूछूं, इनसे जानूं कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। आप उनसे उनके इंटरव्यू के बारे में बातें कीजिए, मेंस की तैयारी करते हैं उसके बारे में बातें कीजिए, प्री के बारे में बातें कीजिए। देखिए, हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो आपसे बात सही सही तरीके से न करना चाहे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ज्यादातर कैंडिडेट आपसे बड़े प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। स्वाभाविक भी है कि भाई हम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो कम से कम ये हमें पहचान तो रहा है, मेरे पास आया है और मुझसे ये बात कर रहा है। आपको ऐसा करना चाहिए। आप पाएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, ढेर सारी बातें आपको उनसे बात करके पता लग जाएंगी, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा आपके लिए। मैंने हमेशा ये किया है, कहा है, स्टूडेंट ने किया भी है, और उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम उनको मिले हैं। कोशिश कीजिए, देखिए आप दिल्ली में हैं, ये आपके लिए एक वरदान जैसा है, उसका लाभ उठाइए। दिल्ली के अगर आप आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, समय निकालिए, आइए एक दिन रह करके चले जाइए, उसमें क्या, रात में लौट जाइए। और यदि बहुत दूर के कोई स्टूडेंट हैं और उनके आसपास इसी इन्हीं डेट्स के आसपास दिल्ली आने का प्रोग्राम है, तो बेहतर है कि अपने उस काम में इस काम को भी शामिल कर लें और इसे प्रायोरिटी पर रखें। दोस्तों, ये बहुत उपयोगी होगा और आप सबको करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट अपनी ओर से, वो ये कि जब आप इंटरव्यू के स्टूडेंट से बात कर लें तो बेहतर होगा फिर घर जाएं और एक नोट जैसा तैयार करें कि उसने क्या क्या बातें आपको बताई, मेंस की तैयारी के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, इन सब पर एक नोट बनाए। इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और जब आपको लगे कि ठीक ठाक बन गया है तो यदि आप मुझ तक उसे भेज सकेंगे तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपके प्रति पूर्व आभार व्यक्त कर रहा हूं। यदि मुझे ठीक लगा तो डेफिनेटली मैं फिर अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में उसकी चर्चा करूंगा, स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में कम से कम एक धारणा तो बन सके कि अच्छा इंटरव्यू किस तरीके के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपके मस्तिष्क में बहुत स्पष्टता आएगी। मुझे लगता है फ्रेंड्स, प्लीज आप कोशिश कीजिए कि आप इसे कर सके। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, भारत उसका एक अस्थायी सदस्य, 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उसमें इस बार भारत का भी चयन हुआ है। और फिर ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये फिर रोटेशन के आधार पर एक एक महीने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हुए उसकी अध्यक्षता का पद संभालते हैं। तो भारत ने कल से, यानी कि रविवार से, इसकी अध्यक्षता का पद संभाल लिया है। मतलब रविवार मतलब 1 तारीख से, 1 अगस्त से आखिरी अगस्त तक वह इसका अध्यक्ष रहेगा। ये तो चलिए एक सामान्य सी बात है, और इसी तरह का एक मौका उसे अगले साल के लास्ट में जाकर मिलेगा, यानी कि 2 टर्म्स इसे भारत को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वहां जो टीएस मूर्ति जी हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने जिन 2-3 बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, मुझे लगता है कि वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल फोरम पर हमारे प्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि भारत की विदेश नीति का ये एक अनिवार्य अंग है, और जब भी विदेशी मंचों पर जब कोई बात होगी या लोगों से, दूसरे देशों से संपर्क बढ़ाने की बात होगी, तो उसमें भारत इन मुद्दों को शामिल करना चाहेगा। उन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला है समुद्री सुरक्षा, कि समुद्र की सुरक्षा इंश्योर की जानी चाहिए। आपको मालूम है, अगर हम इसका थोड़ा सा अर्थ निकालना चाहें, तो किस तरह से जो चीन है वो पूरे के पूरे इधर हिंद महासागर में धीरे धीरे अपना फैलाव करता चला जा रहा है। फिर हमारा जो पश्चिमी तट है, खासकर उधर अफ्रीका और भारत के बीच का जो हिस्सा है, वहां समुद्री डकैती काफी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा है कि वो समुद्री सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देगा। ठीक इसी तरह से शांति रक्षा पर जोर देगा। यहां शांति रक्षा का मतलब है कि पीस कीपिंग फोर्स, दुनिया के ऐसे देश जहां व्यवस्था है, कानून की बड़ी भारी समस्या है, आतंकवाद का बहुत ज्यादा जोर है, तो वहां फिर जो यूएनओ है वो पीस कीपिंग फोर्स, जिसे शांति रक्षक दल कहते हैं, वो भेजता है और भारत उसमें शामिल रहता है, तो इनकी रक्षा हो सके, क्योंकि इन पर अटैक होते हैं, इनको काफी खतरा रहता है, तो इस प्रश्न को उठाएगा। और जो तीसरा है वो है आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, कि कैसे विश्व में धीरे धीरे जो आतंकवाद फैलता जा रहा है उसको कम किया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, और मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति के तहत ये ऑलरेडी ये 3 पॉइंट्स शामिल हैं, लेकिन चूंकि अभी एक ऐसा अवसर था जब इन्होंने दोहराया है, तो आपके ध्यान में ये बात फिर से होनी चाहिए, और इन 3 बिंदुओं को आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मान लें, और जब भी आपको अखबारों में इसके बारे में कुछ पढ़ने को मिले तो बस थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान दे दें। दैट्स ऑल। दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चुना है धार्मिक स्वतंत्रता, आपको थोड़ा सा उठपटांग सा लग रहा होगा, क्योंकि ये तो कोई नया विषय नहीं है जिस पर बात की जा सके, लेकिन खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी बातें कही हैं और एक जो याचिका दायर की गई है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, मुझे लगा कि इस विषय पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमेशा भारत में बहस होती रहती है, और सच पूछिए तो कोई स्पष्टता अभी तक नहीं बन पाई है। उसके रीजन चाहे जो भी हो, रीजन भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन खासकर अभी जो इससे जुड़ी जो बिल्कुल नई घटनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक बात कही है, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ताकि यदि इस पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत सटीक तरीके से टू द पॉइंट आंसर दे सके। पहला तो यह कि हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियर होते हैं, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी कि संविधान ने जो भी हमारे यहां बालिग हैं उन नागरिकों को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से धर्म को अपनाने, यह धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, और अपनी पसंद का विवाह करने, जीवन की स्वतंत्रता हो गया, ये की स्वतंत्रता दी है। मतलब वो अपने धर्म, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, और बकायदे अपने पसंद के से विवाह कर सकते हैं। फिर वो अंतरधार्मिक विवाह भी हो सकता है, अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है, उस पर कोई कानूनी रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, ठीक है। संविधान सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, धर्म बदल देते हैं। इसके बाद जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है वो है कि जो धर्म के जो लीडर्स हैं उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके धर्म को छोड़ करके कोई दूसरा धर्म अपना रहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, तो उन्हें अपने धर्म में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है यदि वह धर्म बदलने लगे तो डेफिनेटली इससे देश कमजोर होता है और जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो इसका फायदा उठाती हैं। अब आप देखें कि इसको अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे भारत पहले हिंदू धर्म समाज था, अब हिंदू धर्म ही कहना पड़ता है, अदरवाइज तो हिंदू धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने एक जीवन शैली का नाम दिया है, एक उदार विचार का नाम दिया है, लेकिन चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आने के कारण कुछ लोगों को बिल्कुल समाज के एकदम नीचे क्षेत्र में डाल दिया गया, उनको उपेक्षित किया गया, समाज के मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया। फिर बाद में जब दूसरे धर्म के लोग भारत में आए, स्पेशली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जो धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने किया वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे, तो आप पाएंगे कि इतिहास में बकायदे इसका उल्लेख मिलता है कि ये वे लोग थे जो समाज से बहुत ज्यादा उपेक्षित थे। न तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, न वो समाज की मुख्य धारा में शामिल थे, न समाज उन्हें सम्मान देता था। तो ऐसे में उनको लगा कि अपना धर्म बदल दो तो जब हम उस धर्म में शामिल हो जाएंगे तो कम से कम हम एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो डेफिनेटली अब आप देखिए कि जो हाई कोर्ट कह रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। जो दूसरी बात है दोस्त, इसी से जुड़ी हुई जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो धार्मिक और धर्मार्थ दान जो दिया जाता है, यानी कि धार्मिक जो स्थल है और जो धर्म के लिए दान दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है, उसके लिए समान संहिता बनाई जाए, वो सबके लिए एक जैसी हो। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसी याचिका की क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, देखने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं कि उनका नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में है, ठीक है, यानी कि सरकार के हाथ में मोटे तौर पर कह लीजिए। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं कि उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनका नियंत्रण उनके अपने ही हाथों में है, वो अपने, आप कह लीजिए जो धार्मिक स्थल हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, उनका प्रबंधन स्वयं करते हैं। तो उसमें ये बात कही गई है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार दिया गया है, उनके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, वो सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो धार्मिक और धार्मिक संस्थानों के लिए सर्वमान्य चार्टर और धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रबंधन के लिए समान संहिता बनाई जाए, ये उन्होंने मांग की है। तो दोस्तों इस पर विचार कीजिएगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ही लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं वर्षा, सोनल सरताबे और दीपक तोमर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।